الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में हम आजकल किताबुल वसीयत वल मीरास, यानी वसीयत और मीरास के अहकाम पढ़ रहे हैं तसहील बहश्ती जेवर किताब से, जो कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की असल बहश्ती जेवर की का एक अपडेटेड वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है। इसमें बहुत सारी बातें हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अपने अल्फाज में ही नकल की गई हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो नए मसाइल और नए हालात के हिसाब से भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। तो जो हमने हुकूक़ वालिदैन का टॉपिक पढ़ा था, तो वो असल बहश्ती जेवर में से ही है, अगरचे के किसी के आप में से किसी के जो है वो निशानदेही करने पर जब इस आजिज़ ने बग़ौर देखा तो बहश्ती जेवर जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने असलन शुरू में लिखी थी, तो उसमें जो है ये हुकूक़ वालिदैन का बाब नहीं था, ठीक है। लेकिन बहश्ती जेवर का फिर जो उसके अंदर एक तरह से जब उन्होंने एडेंडम लिखा, यानी उसमें उसमें एक इजाफे किए, तो वो फिर बहश्ती गौहर के नाम से हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी ही लिखी हुई किताब बहश्ती गौहर के नाम से फिर वो छपी, जिसको के बहुत सारे एडिशंस में बहश्ती जेवर के साथ ही मिला करके पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ये हुकूक वालिदैन जो हैं, अगर आपको किसी बहश्ती जेवर में ना मिलें तो परेशान ना होइएगा कि ये हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये आपको किसी दूसरे एडिशन में मिल जाएगा जो कि बहश्ती गौहर के साथ प्रिंटेड होगा, ठीक है। तो वो भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ही लिखा हुआ है। बहरहाल, तो ये तो हुकूक वालिदैन के बारे में था, और जो आजकल चल रहा है, पिछले हफ्ते हमने शुरू किया था किताब लोसिया वल मीरास, तो उसमें हम दो तीन मसले जो है वो दो मसले जो है वो पढ़ चुके थे। पेज नंबर 318 के ऊपर ये मसाइल हैं। इसमें एक और बात अभी अभी दिल में आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो आयत नाजिल फरमाई, ये जो आयत फरमाई ना जिसमें हुकूक अदा करने का हुक्म है, इन्ना अल्लाह यअमुरकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, ठीक है, कि जो अमानतों के अहल हैं, मुस्तहक हैं, ठीक है, उनको उनकी अमानात जो है वो अदा कर दो, ठीक है। तो ये आयत जो है ये कुरान मजीद की कौन सी वाली सूरत के अंदर है? कुरान मजीद की बहुत सारी सूरतें हैं, अल्लाह ताला ने ये वाला हुक्म अमानतों को उनके अहल को अदा कर देने का जो हुक्म है, ये कौन सी वाली सूरत के अंदर रखा? सूरह निसा के अंदर, सूरह निसा औरतों वाली सूरत के अंदर रखा, ठीक है, क्योंकि औरतों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी स्ट्रक्चर वाइज और उनकी जो मुआशरे के अंदर पोजीशन रखी है वो कमज़ोर रखी है, ठीक है। तो उसी सूरह निसा के अंदर ही इस पोजीशन का भी जिक्र किया है ना कि अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, के रिजाल औरतों के ऊपर जो है वो कव्वाम बनाए गए हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल बनाए गए हैं, और फिज़िकली भी ताकतवर बनाए गए हैं, और मुआशरे में जो कामकाज के हिसाब से भी जो है वो उनका एक डोमिनेटिंग रोल होता है। तो वो भी सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया, अर्रिजाल कव्वामून अला निसा, और उसी तरह से निसा के हुकूक की हिफाजत का हुक्म भी जो है वो, ठीक है। तो हर अमानतदार को अमानत देना, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट से इस सियाक व सबाक से कि ये वाला जो हुक्म है अमानतें देने वाला हुक्म, ये सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। ठीक है, तो औरतों के हुकूक की तह का तहफ़ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से फरमाते हैं, ठीक है, कि खास ताकीद करके, तकवा की भी खास ताकीद करके, और जो है वो अहकामात भी इस तरह से दे करके। अच्छा, इसी आयत के एक या दो आयत के बाद वो वाली आयत भी मौजूद है, ठीक है, इसी के दो तीन आयत के बाद जो है वो आयत भी सूरह निसा के अंदर मौजूद है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अती अल्लाह के साथ साथ, अती और रसूली के साथ साथ, व उलिल अम्र मिनकुम का भी हुक्म फरमाया। उलिल अम्र मिनकुम वाली जो आयत है ना, कि तुम्हारे दरमियान जो मौजूद अहले इल्म हो, अहले फतवा हो, अहले कवा हो, ठीक है, जो तुम्हारे दरमियान मौजूद हो, लाइव गाइड्स, लाइव जो तुम जिंदा जिंदा जो ऐसी शख्सियात मौजूद हो ना, कि जिनके पास इल्म है और जिनके पास अथॉरिटी है, जिनकी लोग बात मानते हैं, तो तुम उनकी भी अताअत करो, ठीक है, क्योंकि क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मामलात जो है ना वो नए पेश आएंगे कि जिनकी तुम्हें रहनुमाई मनुअन या लफ्जन लफ्जन जो है वो कुरान में नहीं मिलेगी, तुम्हें लफ्जन लफ्जन उनकी रहनुमाई हदीस मुबारका के अंदर नहीं मिलेगी, बल्कि हालात के एतबार से कोई मशवरा देने वाला तुम्हें चाहिए होगा, कोई गाइड करने वाला तुम्हें चाहिए होगा। तो जो तुम्हारे दरमियान जिंदा होंगे ना, मौजूद होंगे, तो उनकी उनसे मशवरा करो और फिर उनकी बात को मानो भी, ठीक है ना। हमारे अल्लाह रहम करे, कुछ लोग होते हैं जो लिखते तो बड़ा है, हजरत जी हम तो आपसे पूछ करके काम करते हैं, हजरत हम तो आपसे जो है वो मशवरा करते हैं, हम आपकी गाइडेंस को फॉलो करते हैं, लेकिन उनको एक जुमला कहो ना, वो उन्होंने कोई अमल नहीं करना होता उसके ऊपर, उन्होंने मानना ही नहीं होता उसको। लेकिन निछावर और निसार होना, वो अल्फाज बड़े सीखे हुए होते हैं, लफाजियां बड़ी सीखी हुई होती हैं, कि जी आप तो बस हैं, लेकिन मानना वाना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया है, अती अल्लाह व अती रसूली व उलिल अम्र मिनकुम, ठीक है ना। तो मियाँ बीवी के झगड़े खास तौर पर, मियाँ बीवी के झगड़े खास तौर पर ऐसे होते हैं कि जिसमें आप अगर किसी से मशवरा करते हैं जा करके, कोई आपका शेख है जिससे के बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो भैया अब आप उनकी माने भी तो सही ना, मान के तो एक नहीं देनी होती, एक मान के नहीं देनी होती ऐसे लोगों को, और उनके झगड़े जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होके देते, बल्कि बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और नौबत जो है ना फिर वो सेपरेशन तक आ जाती है, तलाक तक आ जाती है, औलादों के खराब होने तक नौबत आ जाती है। लेकिन अगर वो शुरू में मान लेते ना बात, तो मसला वहीं पे हल हो जाता, वहीं पे खत्म हो जाता और दुरुस्तगी हो जाती, लेकिन नई बात मान करके देनी होती है, अपनी चलानी होती है, और आगे से हजरत हजरत भी बड़ा करना होता है। तो क्या, तो भाई आप रिस्पॉन्सिबल खुद है ना, यानी आप अपने अंजाम के और अपने जो जिंदगी के मसाइल हैं उनके खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप बात क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मामला पूरा किया हुआ है। सूरह निसा भी लंबी सी, हत्ता के कुछ लोगों को ये भी शुबा हो गया कि कुरान मजीद की दूसरी सबसे बड़ी सूरत जो है ना वो सूरह निसा है, हालांकि है सूरह आले इमरान सूरह बकरा के बाद, ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी सूरत औरतों के मसले में, और उसके अंदर ऐसे ऐसे अहकाम, ऐसी ऐसी बातें जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शामिल कर दी। तो वसीयत और मीरास का भी जो मसला है वो हम भी यहाँ पर इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसकी अहमियत समझाने के लिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो फतवा देना नहीं है, जो मसाइल है वो तफसीली तौर पर समझाना, इसके लिए जो है वो उलमाए कराम मौजूद हैं, दारुल इफ्ता मौजूद हैं, मुफ्ती हजरात मौजूद हैं, वो आपको एग्जैक्टली जो है ना वो मसाइल के जवाब देंगे, देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। हम यहाँ पे बैठ करके ये काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बैठ करके उसकी अहमियत को वाज़े करना, ताकि आप जाएं मुफ्ती हजरात के पास, आप जाएं दारुल इफ्ता में और इन मसलों को जो है वो पूछें और उनके मुताबिक हल करें। ये ना कहें कि नहीं जी बस, तो बस जो मेरे हाथ आ गया सो मेरे हाथ आ गया, अब्बा मर गए, अब जो है वो बस मेरी मर्जी, जैसे भी मैं करूं, ठीक है। तो वसीयत और मीरास के की अहमियत को समझना, इसलिए ठीक है ये हम क्लास कर रहे हैं, इसी वजह से सारे मसाइल हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी नहीं जो इससे रेलिवेंट होंगे, इस्लाही नज़र से जिनकी अहमियत बनेगी, तो हम खाली वही यहाँ पे आपको सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो मसला नंबर 2 तक हमने पढ़ लिया था, जो थोड़ी यानी बहुत ही मुख्तसर इसका खुलासा कि जिंदगी में जो भी किसी को दे दिया जाता है उसको हदिया कहते हैं या हिबा करना कहते हैं, ठीक है ये दोनों दो चश्मी हाथ से लिखे जाते हैं, हदिया करना या हिबा करना। जब आप किसी को कोई चीज हिबा कर देते हैं तो वो चीज आपकी मिलकियत से निकल कर उस शख्स की मिलकियत में चली जाती है, ठीक है ना, उस शख्स की मिलकियत में चली जाती है, अब वो उसको जैसे चाहे खर्च करे, ठीक है ना, वो उसकी मर्जी है, आपसे उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो मेरी चीज थी मैंने उसको दी तो अब वो मेरी इजाजत से उसको खर्च करे, नहीं, आप खुदा नहीं है, ये अथॉरिटी कि मेरी चीज थी मैंने तुमको दी हुई थी तो मेरी मर्जी से खर्च करना, ये किसके पास है, ये सिर्फ अल्लाह के पास है, ठीक है ना, ये सिर्फ अल्लाह के पास है कि जो कुछ हमारे पास है अल्लाह का दिया हुआ है तो हम अल्लाह की मर्जी से खर्च करें वरना हमें सजा मिलेगी, इंसानों के पास ये अथॉरिटी नहीं, ठीक है ना। तो आप किसी को हदिया देती हैं उसके बाद आप जो है वो ये डिमांड नहीं कर सकती, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, इसके ऊपर आप मुंह फुला के नहीं बैठ सकती कि उसने मेरी मर्जी के खिलाफ इसको खर्च कर लिया, ठीक है भाई, वो आपने दे दी अब उसकी मिल्कियत हो गई, अब वो उसको जैसे चाहे खर्च करे, हाँ अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खर्च करेगी करेगा तो उसको सजा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करेगा तो जजा मिलेगी अल्लाह की तरफ से, ठीक है। तो ये मिल्कियत का कॉन्सेप्ट होता है, ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो जिंदगी में दे देना ये हिबा करना या हदिया करना कहलाता है, और मौत के बाद जो किसी को दिया जाता है तो उसको वसीयत कहा जाता है, ठीक है, अगर आप कह के गए हैं कि उसको दे देना तो उसको वसीयत कहा जाता है, वरना फिर वो विरासत कहा जाता है जो कि अल्लाह की तरफ से तकसीम तयशुदा है। इसमें फिर हमने कफारा और यानी रोजा वगैरह, नमाज रोजा वगैरह का कफारा का मसला भी हमने पढ़ लिया था, 3 बातें थी मसले नंबर 2 के अंदर कि रोजे वगैरह कफारा बाकी रह गया हो तो उसके लिए वसीयत करना जरूरी और वाजिब है, ठीक है। दूसरी चीज थी कि अगर किसी का कुछ कर्ज हो या कोई अमानत वगैरह हो तो उसकी वसीयत करना भी वाजिब है, यानी अपनी वसीयत नामे में उसको लिख देना कि मेरा मेरे ऊपर फलाने शख्स का इतना कर्जा है अभी तक मैंने अदा नहीं किया है, मेरे मरने के बाद उसको अदा किया जाए, ये लिखना भी वाजिब है। और तीसरी चीज ये क्या थी कि अगर कोई रिश्तेदार गरीब हो और वो वारिस ना बन सकता हो, यानी वो आपका वारिस नहीं बनता हो शरीयत की रूह से, तो उसके लिए कुछ वसीयत कर देना ये मुस्तहब है, ठीक है, सवाब मिलेगा अगर करेंगे, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। मसला नंबर 3 जो आज हमने पढ़ना था कि मरने के बाद मियत के माल में 4 चीजें बिलतरतीब जारी होती हैं, ठीक है, बिलतरतीब का मतलब ये होता है इन एन ऑर्डर, सबसे पहले ये चीज होगी, दूसरे नंबर पर ये चीज होगी, तीसरे नंबर ये चीज, चौथे नंबर पर ये चीज। तो कफन दफन का खर्चा, उनमें से पहली क्या है, कफन दफन का खर्चा, कर्जे की अदायगी, वसीयत का निफाज और मीरास की तकसीम, ठीक है ना, ये इस ऑर्डर के अंदर जारी होती हैं, यानी अप्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, यानी मीयत का जितना तरका हो, तर्क जिसने जितना उसने छोड़ा हो, ठीक है, यानी उसकी कितनी ओनरशिप थी मरने से पहले पहले उसने अगर खर्च कर दी तो वो उसकी ओनरशिप खत्म हो गई, अब वो किसी और की ओनरशिप पे चला गया, लेकिन मौत तक जो कुछ उसकी ओनरशिप में था तो वो उसका तरका है, क्योंकि वो उसको अपने साथ अपनी कब्र में नहीं लेकर के जाएगा, ठीक है, अपने कब्र में उसको नहीं लेकर के जाएगा, तो फिर उसने तर्क कर दिया यानी छोड़ दिया उसको, अबैंडन कर दिया इस दुनिया के अंदर, तो इसमें सबसे पहले उसके कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया जाए, ठीक है, यानी उसका कफन जो बाजार से खरीदना होगा या ऑलरेडी मौजूद नहीं है। कुछ लोग तो अपना कफन जो है वो पहले से खरीद करके घर में रख लेते हैं, लोगों को बता देते हैं, या अहराम जो है वो अपने कफन के तौर पर कह देते हैं कि जी इसी को मेरा कफन बना देना, जमजम से धो वो करके लेकर के आते हैं वगैरह वगैरह, जो भी कफन है। अगर नहीं है तो फिर बाजार से खरीदना पड़ेगा उसको, ठीक है। दफन का खर्चा, दफन का मतलब क्या होता है कि जिस जमीन में आपकी कब्र बनाई जाएगी वो जमीन भी जो होती है वो किसी कीमत में आती है। उम्मीद तौर पर शहरों के अंदर जो कब्रिस्तान होते हैं तो उनके जमीन की बाकायदा प्राइस होती है, ठीक है, वो फ्री में नहीं होता। रेगिस्तान में अगर जाकर के दफन होना है तो फिर वहां पे कोई कीमत नहीं मांगेगा कि भाई यहाँ भी रेगिस्तान में कब्र बना रहे हैं तो आप पैसा दें, ऐसा तो हुकूमत का कोई सिलसिला हमने सुना नहीं, ठीक है। तो फिर शहर के कब्रिस्तान में तो फिर उसकी प्राइस होती है ना कब्र की, तो इस वजह से वो प्राइस पे करनी होती है। कहाँ से पे करें कि इसके अपने तरके में से, ठीक है। अच्छा, अपना तरका जरूरी नहीं है कि नहीं उसके तरके में से ही उसका कफन दफन करना जरूरी है। अगर उसका बेटा अपने पैसे में से उसके लिए कफन खरीद के लिए आता है, बेटी जो है वो अपने पैसे में से उसके लिए जो है वो दफन का इंतजाम कर लेती है, तो ये भी जायज है, ठीक है। यानी ये कोई नहीं है कि नहीं ये क्योंकि उसकी कब्र है तो उसी की जो है वो तरके में से खरीदा जाएगा, ठीक है। तो कफन दफन का बंदोबस्त जो है वो सबसे पहले किया जाए, उसी के पैसे में से अगर करना है तो पहले किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी बचे, अच्छा, कफन दफन शरीयत के अंदर जितना है वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि जो सुन्नत तरीका है कब्र बनाने का वो ये गढ़ा ही होता है उसके अंदर, और उसके ऊपर जो है ना बस थोड़ा सा एक ऊंट के कोहान, ठीक है, ऊंट का जो ऊपर बम्प वो होता है हम्प, तो हम्प ऑफ द कैमल, ऊंट के कोहान के जैसे जो है ना वो मिट्टी को उठा दिया जाए, एंड दैट्स इट, बस, ठीक है। बाकी उसके ऊपर जो कतबा लगाना है ना उसको भी किताबों में लिखा है कि वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, जिसके ऊपर ये शेर लिखा होता है कि अफसोस उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए और उम्र 90 साल है, ये भी बहुत लिखा होता है ना, 90 साल उम्र है और शेर क्या लिखा हुआ है, अफसोस उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, यानी अभी तो इनके खिलने के दिन थे, अभी तो ये खिले ही नहीं थे और अभी से ही जो है वो मौत आ गई उनको, और उम्र जो है वो 99 साल, ठीक है। तो ये तमाशे भी बहुत होते हैं यानी इसके लिए, बहरहाल, लेकिन कतबा जो है वो हमारे बुजुर्गों के कब्रों के ऊपर लगा भी है, जैसे दारुल देवबंद के अंदर भी हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के ऊपर जो है वो बाकायदा एक कतबा, जिसको यानी मिट्टी की दीवार छोटी सी होती है, उसके ऊपर नाम लिखा होता है, वल्दियत लिखी हुई होती है, तारीख पैदाइश और तारीख वफात, और थोड़ा उनका अगर कोई मनसब वगैरह था तो बस वो लिखा होता है, देन दैट्स इट। इसके ऊपर जो इमारत बनाना, कमरा बनाना, इसको कुबा बनाना कहा जाता है, इसकी जो है वो वैसे भी मुमानियत ही आई है एक्चुअली हदीस के अंदर, कोई बना दे तो वो उसका अपना फेल है लेकिन उसको पसंद नहीं किया गया। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के ऊपर भी कुबा का बड़ा लंबा मसला था, जो कि आपने शायद सुना भी हो बयान के अंदर, काफी उसको लोगों ने बयान किया है कि कुबा बनाना जो है वो उसकी जवाज नहीं थी लेकिन बना दिया गया था, तो फिर उसके बाद उसको तोड़ने के ऊपर फिर बात हुई थी, तो उसके ऊपर बड़ी दलीलें वगैरह से फैसला ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गुम्बद बना दिया गया है तो वो अब उसको नहीं तोड़ा जाए, उसकी दूसरी वजूहत थी, ठीक है, वरना ये सऊदी जो है ना ये तो तोड़ने वाले थे उसको। बहरहाल, तो कमरा उमरा तो वैसे भी नहीं हमारे बुजुर्गों की, इवन हमारे जो अकाबरीन और दारुल देवबंद है इधर कोई कमरा शमरा नहीं, अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह की अपनी कब्र मुबारक की भी तस्वीर देखी, कोई कमरा नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। तो इतना सस्ता सा मामला है कफन तफन का, तो फिर जो है वो अगर शरीयत के तरीके से किया जाएगा तो फिर बहुत थोड़ा सा खर्च आएगा इसके ऊपर, ठीक है, अगर उसी बंदे के माल में से खर्च करना ही है तो बहुत थोड़ा सा ही खर्च होगा। फिर उसके बाद जो बचेगा, यानी बचेगा भी थोड़ा सा खर्चा था, उसके बाद बचेगा इंशाल्लाह, तो सबसे पहले उसमें से उसका कर्ज अदा करना चाहिए, ठीक है, जो उसने लोन्स लिए हुए, कर्ज लिए हुए, बैंक का लोन लेते हैं आजकल तो बहुत बड़े बड़े जो है ना वो बैंक के लोन्स होते हैं, इस्लामी क्या कहते हैं, शरिया कंप्लाइंट लोन्स चाहे आप गाड़ी के लिए लें, चाहे आप घर के लिए लें, चाहे आप किसी चीज़ के लिए भी लें, तो वो भी एक लोन है, वो भी एक कर्ज है। और किसी इंसान से लें तो वो भी एक कर्ज है। कि बैंक भी जो होता है ना, बैंक भी जो होता है वो कोई हैवान नहीं होता। बैंक बैंक जो होता है ना वो कोई चीज नहीं होता। बैंक के अंदर जो माल होते हैं वो उसी से आप कर्ज लेते हैं ना। तो वो माल किसका माल होता है? वो माल जो है वो माल वालों का माल होता है, वो इंसानों का माल होता है जिन्होंने अपने डिपॉजिट्स बैंक के अंदर किए हुए होते हैं। ठीक है, तो मीजान बैंक जो है ये कोई इमारत का नाम कोई थोड़ी है। ठीक, ये तो इंसानों के पैसे का नाम है जिन इंसानों ने वहां पे इन्वेस्ट किया है मीजान बैंक के अंदर। ठीक है, तो बैंक से कर्जा लेना भी जो है ना ये भी वापस करना होता है। ठीक, तो जो उसने कर्ज दिया है ना तो कर्ज अदा करने चाहिए, वसीयत की हो या ना की हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर उसने वसीयत नहीं की है लेकिन जो उसके रिश्तेदार हैं उनको पता है कि हाँ उसने बैंक से लोन लिया हुआ था, यूसुफ फलाने शख्स से लोन लिया हुआ था, तो अब वो लोन वापस करना होगा चाहे उसने वसीयत में लिखा हो या ना लिखा हो। ठीक है, कर्ज अदा करना बहरहाल जरूरी है। बीवी का मेहर भी कर्जे में दाखिल है, यानी बीवी का जो मेहर तय इसने वादा कर लिया था ना ये भी कर्जा है इसके ऊपर, इसको भी उसने अदा करना है। अच्छा, ये जो मेहर वाला कर्जा है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट कर्जा है। वो कैसे? मरने के बाद, मरने से पहले अगर अदा नहीं किया तो फिर ये कर्जा है, ये अदा करना होगा, उसकी वस उसके तरके में से अदा करना होगा। ठीक है, लेकिन जब जकात अदा करता है एवरी ईयर, जो जकात अदा होती है ना सालाना, तो जकात में भी आपको उम्मीद है पता होगा कि जो इंसान के जकातबल एसेट्स होते हैं, जो उसके असासे होते हैं जिन पर जकात अदा करनी होती है, ठीक है, जैसे बिजनेस का जो माल है, जो कैश है, जो जेवर है, ठीक है, और जो जरूरत से जायद जो उसके पास चीजें मौजूद हैं, ये सब जकातबल एसेट्स कहलाते हैं, यानी जिन असासों के ऊपर जकात वाजिब होती है। ठीक है, तो जब इंसान अपनी जकात कैलकुलेट करता है तो वो क्या करते हैं कि पहले इन जकातबल एसेट्स के जो वैल्यू होती है उन सबको एड अप करते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या करते हैं? फिर उसके बाद उनमें से जो कर्जे होते हैं, जो इसके अकाउंट पेएबल्स होते हैं, यानी जो इसने कर्जे किसी को अदा करने होते हैं, वो कर्जे उसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, अरबी में कहते हैं मिनहा करते हैं, मिनहा फ्रॉम इट, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो बैलेंस आता है ना उसके ऊपर जकात अदा की जाती है, यानी उसको उसका जो 2.5% होता है। ठीक है, तो जकातबल एसेट्स माइनस अकाउंट पेएबल्स, यानी जो अदायगियां इसके ऊपर वाजिब हैं उनको माइनस करते हैं। ठीक है ना, फिर जो नेट रिजल्ट आता है उसको 0.025 से मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपकी ज़कात होती है, इसका नतीजा। लेकिन इस शख्स के ऊपर क्या कहते हैं मेहर, अभी इसने बीवी को अदा नहीं किया तो ये उसके ऊपर कर्जा है, इस कर्जे को ज़कातबल एसेट्स में से माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, इस मेहर को उसके ज़कातबल एसेट्स में से माइनस नहीं करेंगे। उसी तरीके से बीवी की ज़कात जब कैलकुलेट की जाएगी तो किसी की जकात कैलकुलेट करने के लिए भी जो जकातबल एसेट्स को आप एड अप करते हैं ना, तो उसके अंदर जो आपने कर्जे किसी से वसूल करने हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स जिनको कहा जाता है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, उनको भी जकातबल एसेट्स के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन बीवी साहबा को अभी मेहर की रकम नहीं मिली शौहर से, $10,000, ₹2,000, जितनी भी है, लेकिन वो उसके जकातबल एसेट्स के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो वरना अगर जकातबल एसेट्स के अंदर जो है ना वो अकाउंट रिसीवेबल्स में आपको, आप अगर अपना मेहर भी ऐड कर रही होती तो फिर क्या होता बेगम साहिबा, फिर क्या होता, उनकी जकात जो है ना वो बढ़ जाती। ठीक है ना, शौहर साहब ने तो मेहर देना नहीं है लेकिन बेगम साहिबा जो है ना वो उसके ऊपर जकात अदा कर रही है, क्योंकि जी ये कर्जा वसूल करना है शौहर साहब से, तो जकात तो मुझे अदा करनी पड़ेगी फिर इसकी। है ना, जिस तरह से कि हर कर्जे की ज़कात अदा करनी होती है जो आपने किसी से रिसीव करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे किसको अल्लाह रब्बुल इज्जत फेवर कर रहे हैं, शौहर साहब को फेवर कर रहे हैं या बेगम साहबा को फेवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेगम साहबा जो है वो इस अंदाज से भी फेवर की जा रही है, ठीक है, कि उनको जो है ना वो एडिशनल ज़कात नहीं पे करनी पड़ेगी उस चीज़ की जो कि उनके पास है ही नहीं। शौहर साहब तो पता नहीं कब देंगे या देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना औरतों का इस तरह से इंतजाम किया है, ठीक है ना, और दुनिया वालों ने औरतों का किस तरह से इंतजाम किया है ये आप बता दें। काफिरों ने, शयातीन ने औरतों का किस तरह इंतजाम किया है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों का किस तरह इंतजाम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों का इंतजाम कैसे किया, उनको प्रोटेक्ट करके, परवाह करके, उनके इस तरीके से जो है ना वो फेवर्स कर करके औरतों का इंतजाम किया, ठीक है। विरासत औरतों को मिलेगी, ठीक है। मेहर का मामला अभी आपने सुना कि जी औरतों को जो है उसमें से कर्ज नहीं मिलेगा, और शौहर के ऊपर इतना बोझ है कि बच्चों मर गए ना तुम अगर, और तुमने जो है ना वो अगर बीवी को मेहर नहीं दिया तो फिर तुम्हारे तरके में से ये दिया जाएगा, ये कर्जा है तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना, वरना तुम अल्लाह के अजाब के लिए तैयार रहो। तो अल्लाह ताला ने औरतों को इस तरीके से फेवर किया है ताकि कल को कोई मुसीबत आ जाए, कल को कोई सिचुएशन पड़ जाए तो उनको सपोर्ट करने वाले मौजूद हों, उनके पास माल मौजूद हो। दुनिया वालों ने क्या तरीका निकाला है, दुनिया वालों से मुराद यहाँ पे शयातीन है, ठीक है ना, चाहे वो इंसानों में से हो चाहे वो जिन्नों में से हो। उन्होंने क्या, मुसीबत पड़ जाएगी तो क्या 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 तरीका है जी, जल्दी से जरा बताएं। 85 खवातीन कि कल को कुछ तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़ जाएगी तो तुम्हारे तुम्हारा इंतजाम होगा, कैसे होगा भाई। जॉब करके, ठीक है ना, अपने पांव पर खड़ी होना सीखे, सेल्फ डिपेंडेंसी, ठीक है, एजुकेशन इज मस्ट सो दैट शी कैन वर्क, ठीक है ना, आधे एसेट शौहर को देने होंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ इस मामले में ना दीन को फॉलो किया जाता है कि ऐसे आधे एसेट्स नहीं देने होंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या चीज़ है, हमारे यहाँ ना इधर के ना उधर के, ना वेस्टर्न तरीके से जो है ना वो शौहर सब कुछ देगा और ना जो है वो अल्लाह ताला के तरीके से, बल्कि मेहनत करो, राइट, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे से ग्रेड्स लेकर के आओ, उसके बाद जो है वो अच्छे से कॉलेज के अंदर एडमिशन लो, ठीक है, अच्छी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, उसके बाद फिर जाकर के चाकरियां करो, नौकरियां करो और चाकरियां करो, हत्ता के जो है वो होता है ना कि अच्छी सी, जब आप कोई डिग्री कर रहे होते हैं, कल जो हमारे घर में बात हो रही थी किसी किसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी, तो हमारी बेगम साहिबा ने बताया बताया क्या मतलब, वो हमें याद दिला रही थी कि भाई उनकी फलानी दोस्त थी तो उसने जो है ना वो कौन सा वाला प्रोफेशन जो है वो किया था, एडॉप्ट किया था, तो यूनिवर्सिटी में तो अमेरिका के अंदर जो है ना वो कह ही रही थी कि अमेरिका के अंदर जो है ना वो बगैर एक्सपीरियंस के तो आपको जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस होगा तभी आपको जॉब मिलेगी। तो अब लोग क्या करते हैं जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना, तो वो फ्री इंटर्नशिप्स करते हैं, फ्री इंटर्नशिप्स, ताकि उनके रेज्यूमे के ऊपर एक्सपीरियंस आ जाए, और जब वो ग्रेजुएट हो तो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद हो तब जाकर के उनको जॉब मिलेगी, वरना उनको जॉब नहीं मिलेगी, चाहे कितनी अच्छी उन्होंने डिग्री हासिल की भी हो, अगर उनके पास एक्सपीरियंस नहीं उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी टाइम उनको इंटर्नशिप करने होते हैं, यानी फ्री में काम करना होता है। तो फ्री में क्या करते हैं, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं, तो उसमें रिसर्च तो वो कम करते हैं, ज्यादा जो है ना उनको खिदमतें करनी पड़ती। तो अपनी दोस्त का बतानी थी कि मेरा मेरी दोस्त जो है ना वो उसने इसी तरीके से एक रिसर्च इंटर्नशिप जो है वो ज्वाइन कर ली, तो वो उसको चाय भी बना करके देना पड़ता था लोगों को, ठीक है, लोगों के जो है वो काम भी करने पड़ते थे, और लेकिन बहरहाल उसकी सीवी के ऊपर जो है वो एक एक्सपीरियंस आ गया उसका, ठीक है। तो जब वो ग्रेजुएट हुई तो फिर उसको जॉब मिल गई, और जिसने ऐसा काम नहीं किया, अपने प्रोफेशन के अंदर जो है वो इंटर्नशिप्स नहीं करी, फ्री में काम नहीं किया, तो उसको जॉब नहीं मिली उसके उसकी अपने के प्रोफेशन में उसको जॉब नहीं मिली, उसको प्रोफेशन चेंज करना पड़ा, तब कहीं जाकर उसको जॉब मिली, ठीक है ना। तो अब औरत जात जो है वो, यानी जब जॉब मिलेगी तब तो वो सैलरी लेकर के लोगों की खिदमत करेगी, और जॉब लेने के लिए उसको जो फ्री इंटर्नशिप करना होगा ना, तो वो फ्री में खिदमत करेगी जाकर, ठीक है, ताकि उसको जो है जॉब मिल सके, ठीक है। तो ये औरत की तजलील है। आजकल जो है वो एक तस्वीर भी जो है वो इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई भी है, पता नहीं वो सच्ची भी है कि नहीं है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर दी जाती हैं। तो तस्वीर का मसला नहीं है, तस्वीर पे हम डिपेंड नहीं करते, लेकिन हकीकत यही है ना कि औरत कैसे खिदमत कर रही है। पाकिस्तान, हम कई साल पहले की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल स्टेशन पे जाते थे जब पेट्रोल डलवाने के लिए, तो छोटे बच्चे आ जाते थे ना वो गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए, ठीक है ना। कभी जो है वो बहुत गरीब कोई बच्ची आ जाती थी, वो गाड़ी का शीशा साफ करके जो है ना, वो फिर वो आपके आपसे भीख मांग रही होती थी, थोड़ा सा शीशा साफ किया फिर आप उसको पैसा दें। लेकिन उस दफा जब हमने देखा कि प्रोफेशनल किस्म के अटायर के अंदर बड़े अच्छे से जो है ना, वो शेल या कैलटेक्स वगैरह का जो है वो यूनिफॉर्म पहन करके एक खातून जो है वो आकर के शीशा साफ कर रही कितना अच्छा, कितना माशाल्लाह तरक्की कर ली। उसी तरीके से जो आजकल इंटरनेट के वो जो वायरल हुई हुई है तस्वीर, वो क्या है कि कोई फुट केयर क्लिनिक है, और उस क्लिनिक के अंदर जो है ना वो एक साहब जो है वो बड़े ठस्से से बैठे हुए हैं, और एक खातून जो है वो उनके हाथ के नाखून बना रही है, दूसरी खातून जो है वो उनके पैर के नाखून बना रही है, और तीसरी खातून जो है वो, लेकिन मजे की बात यह है, मजे की या इबरत की बात यह है कि हर जितने, और पीछे से तस्वीर है ना, औरतें जो है वो उनका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा पीछे से, तो इतना जरूर है कि सब जो है ना वो स्कार्फ पहनी हुई है, ठीक है ना, जिसको कि दुनिया वाले हिजाब कहते हैं। हिजाब कोई नहीं करी हुई, वो स्कार्फ पहनी हुई है सारी की सारी, यानी इतना उनको फिक्र है, अगर ये तस्वीर वाकई सच्ची है तो अगर इतना उनको फिक्र है कि हाँ जी स्कार्फ पहन करके ये काम करना चाहिए, औरत मर्द के जो है ना वो हाथ पकड़ के और पैर पकड़ के और उसके नाखून साफ कर रही है, उसका फलाना कर रही है और ये कर रही है, ठीक है। तो माशाल्लाह औरत ने कितनी इज्जत हासिल करी, कितनी तकरीम हासिल करी। अगर शौहर ने मेहर नहीं दिया तो कई लोग शौहर के मरने के बाद बाकायदा बीवी की जुबान से बुलवा कर मियत के पास सबके सामने मुआफ मेहर मुआफ करवाते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, वैसे कोई मेहर माफ नहीं होता इस तरह करवाने से, वो बस दूसरों को धोखा दे रहे होते हैं अपनी जो है ना वो जाहिलों के सामने, जिन जिनके सामने बीवी आकर के इस तरीके से मेहर माफ करती है ना, तो वो लोग जाहिल होते हैं, तो जाहिलों के सामने अपनी इज्जत जो है ना वो बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह के सामने उनकी कोई इज्जत नहीं बचती और वो अजाब से बिल्कुल भी महफूज नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह से बीवी को बुला करके दूसरों के सामने माफ करवाना बिल्कुल इससे मेहर माफ नहीं होता, ठीक है ना। जाहिलों ने कब्र में जाके जाहिलों ने हिसाब करना है उस बंदे का जो मर गया, राइट, उसके रिश्तेदारों ने जाकर के कब्र में उसका हिसाब करना है, या हशर में जाकर के उन जाहिलों ने जाकर के उसका हिसाब करना है, या अल्लाह ने हिसाब करना है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ना बीवी को ये बातें पता होती हैं, बीवी का भी तो कसूर है ना, उसने क्यों नहीं दीन सीखा, उसने क्यों नहीं जो है वो अल्लाह के हुकूक सीखे और जो है वो शरीयत सीखी, ये उसका भी तो कसूर होता है ना, वो भी खुद भी तो जाहिल ही होती है ना वो, ठीक है। तो वो भी उसका अपना कसूर, उसको अपने कसूर की सजाएं मिल रही हैं और उन लोगों को अपने कसूरों की सजाएं मिलेंगी, ठीक है। मेहर पहले ही क्यों नहीं दे देते, तो ये उनसे पूछें जो नहीं देते, हम क्या बताएं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दे दिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तो कर्ज, ठीक है, अब इसके अंदर एक और बहुत अहम बात यह है कि कर्ज जो है ना ये मजबूरी की सूरत में लेना है, अगर मजबूरी नहीं है तो कर्ज से हर सूरत बचने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये कर्ज जो है ना ये बेशक हलाल है, ये जायज है, वन तो भाई तलाक भी तो जायज है, तलाक देना जायज है ना, तो आपको जो है वो खड़े खड़े जो है आपके शौहर साहब तलाक दे दें कि हाँ भाई ये तो जायज है ना, आज आपने जो है वो अच्छा खाना नहीं बनाया, आज आपने जो है वो उनकी मर्जी की बात नहीं करी, तो शौहर साहब तलाक दे दें कि भाई जायज तो थी ना ये, तो क्या हर जायज चीज होती है वो ऐसे ही जो है वो, यानी जरा सा मूड बने और जायज चीज आप कर दें। कर्ज जो है वो जायज है, लेकिन ये मुसीबत है, कर्ज एक मुसीबत है, हत्ता कि एक हदीस मुबारक जो है वो तक पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम, यानी उर्दू में उसका तर्जुमा ही पढ़ा है, दरअसल अरबी तो नहीं मिली, लेकिन फरमाया कि अपनी जानों को खौफ में ना डालो, अपनी जानों को खौफ में ना डालो। तो पूछा गया नबी अलैहिस्सलाम, अपनी जान को खौफ में डालने से क्या मुराद है? आपने फरमाया कर्ज लेना। ठीक है, कर्ज लेना किसको फरमा रहे हैं? ईमान वालों को फरमा रहे हैं, क्योंकि जो ईमान वाला नहीं होता ना, वो कर्ज लेकर के ऐसे खाता है जैसे उसके बाप का माल था। ठीक है ना, उसको फिक्र ही कोई नहीं होती कि मुझे कर्ज वापस करना है। ईमान वाला जो जानता है कि कर्जा माफ नहीं होगा, इवन शहीद भी हो जाओगे ना अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए, फिर भी कर्जा माफ नहीं होगा, तो वो उसकी तो जान फिर खौफ में आ जाती है ना कि भाई ये कर्जा मैं कैसे अदा करूंगा। ठीक है ना, या ये कि आप बैंक से कर्जा लें, किसी और इंस्टीट्यूशन से कर्जा लें, तो वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना, कन्वेंशनल बैंक्स, हमारे एक जानने वाले जो है ना, वो एक नॉन इस्लामिक, बहुत आज से 25 साल पहले की बात है, तो 25 साल की नहीं बल्कि 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो जानने वाले साहब जो है, वो क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, जब पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड जो है ना वो शुरू हुए थे, तो वो क्रेडिट कार्ड की जो कलेक्शंस डिपार्टमेंट थी ना, उसमें काम करते थे वो साहब। ठीक है, यानी वो लोगों को क्रेडिट कार्ड बेचते थे, तो लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर जब खर्चा करते थे ना, और फिर उसके बाद वो पेमेंट नहीं कर सकते थे, तो ये कलेक्शंस डिपार्टमेंट वाले जो है ना, फिर बाकायदा गुंडे भेजते थे उस बंदे के घर पे। वो गुंडे उसको पकड़ के मारते नहीं थे, क्योंकि ये अमेरिकी बैंक होता था, यूरोपियन बैंक होता था। ठीक है, तो अब इनके गुंडे जो हैं वो बंदे के घर पे जाकर के उसको पकड़ के मारते नहीं थे, क्योंकि ये तो कानून के खिलाफ हो जाएगा ना, लेकिन वो जहनी तौर पर उस बंदे को इतना टॉर्चर करते थे और इतना उसको फॉलो करते थे कि वो बंदा जहनी मरीज बन जाता था, जहनी मरीज बन जाता था, हत्ता कि खुदकुशी कर लेते थे या खुदकुशी के करीब हो जाते थे। तो उस जानने वाले ने मुझे बताया, आज से 35-40 साल पहले की बात बता रहा हूं, कि ये जो पाकिस्तान के अंदर चौधरी वडेरों का जुल्म मशहूर है ना, वडेरों और चौधरी का जुल्म, तो उसने कहा कि मैं कहता हूं कि ये जो हमारे कलेक्शंस डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, ये उनसे ज्यादा जुल्म करते हैं, कलेक्शंस डिपार्टमेंट वाले, यानी जो कर्जा कलेक्ट करने के लिए लोगों के घरों के ऊपर जाते हैं बैंक्स की तरफ से। ठीक है, तो ये जो कर्ज लेना होता है ना, ये मामूली बात नहीं है, दुनिया में मुसीबत है और आखिरत की तो मुसीबत है ही। ठीक है, तो भाई जब मजबूरी हो तो अल्लाह ताला ने जायज तलाक को भी तो जायज किया है ना, उसी तरह कर्जे को भी जायज किया, लेकिन ये कोई थोड़ी है कि कोई घर खरीदने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, अब जो है ना, वो जैसे आपके पास 1 लाख हो, 1 लाख तो कुछ भी नहीं आता उसके अंदर, ट्रॉफी भी शायद आजकल नहीं आएगी, लेकिन जैसे 10 लाख सऊदी में रहते हैं, 10 लाख रियाल आपके पास, 10 लाख रियाल की सेविंग मौजूद है। ठीक है, अब आपको जो है ना एक घर मिल रहा है जो कि 9 लाख रियाल का है। ठीक है ना, आपके पास सेविंग है 10 लाख रियाल की, आप 9 लाख रियाल का घर खरीद सकते हैं, लेकिन नहीं, वो घर छोटा है, उस घर के अंदर फलानी चीज नहीं है, उस घर के अंदर ये नहीं है, उस घर के अंदर वो नहीं है, तो मार्केट के अंदर जो है ना, वो जो 15 लाख रियाल का घर है ना, मैं वो ले लेता हूँ। ठीक है, तो 10 लाख रियाल जो है मैं अपनी सेविंग से दे दूंगा, और 5 लाख रियाल जो है वो मैं कर्जा लेकर के दे दूंगा, और कर्जा जो है मैं बाद में अदा करता रहूंगा। तो अल्लाह के बंदे, तुम्हारे पास जो जितना तुम्हारी जेब के अंदर है वो सारा का सारा तुम खाली कर दोगे, अल्लाह ने इतना दिया, सेविंग दी है, तो भाई जो है तुम्हारे पास उसमें से तुम क्यों नहीं लेते हो? ठीक है ना, या किसी ऐसी जगह पे लो जहां पे कि एक बड़ा घर मिल जाए लेकिन सस्ता सस्ता हो, वो महंगी तरीन जगह पे छोटा सा घर लेंगे कर्जा लेकर के। ठीक है, क्योंकि कर्जा इतना आसान हो गया, अदा तो करना ही नहीं है, या मेरे मेरे मरने के बाद कोई और अदा करेगा, किसी और के मत्थे मत्थे लगेगा वो कर्जा, तो कर्जा लेना इतना जो है ना उसके ऊपर जो है वो हम गिर रहे होते हैं। लेकिन कर्जा मामूली चीज नहीं है, ये अपनी जान को खौफ में डाल, मुस्तकिल की एक टेंशन रहेगी। देखिए, हम समझते हैं कि हमारे पास बड़ा घर होगा ना तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। ओ भाई, जिसने कर्जा लिया है ना बड़ा घर खरीदने के लिए, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं होगी, हाँ दूसरों की अच्छी जरूर हो जाएगी, आपकी बीवी बच्चे वो अच्छे घर के अंदर एंजॉय करेंगे या अच्छी गाड़ी के अंदर सफर करेंगे, लेकिन आपके ऊपर तो मुस्तकिल टेंशन रहेगी ना। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो सिर्फ ये कोई थोड़ी होती है कि आप जो है वो आपके जिस्म को सुकून मिल रहा है, व्हाट अबाउट योर साइकिक, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपके दिमाग को सुकून मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कर्जे का बोझ आपके ऊपर चढ़ा हुआ है, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं आपका, आपसे कर्जा वापस लेने के लिए, और आपको जो है वो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि भाई जॉब कभी कहीं खत्म ना हो जाए। जॉब का कुछ पता होता है किस वक्त जॉब मार्केट के अंदर जो है वो रिसेशन आ जाए, किस वक्त कोई और मसला क्रिएट हो जाए और आपको जो है वो फायर कर दिया जाए, फारिग कर दिया जाए? लेफ्ट एंड राइट लोग जो है फारिग हो रहे होते हैं, जिंदगी से फारिग हो रहे होते हैं, कुछ जॉब से फारिग हो रहे होते हैं। इतना बड़ा जो कर्जा आपने अपने ऊपर चढ़ा लिया है, तो क्या गारंटी है कि आपकी जॉब जो है वो रहेगी, कि आप कर्जा अदा भी कर सकेंगे? तो कहने का मकसद ये है कि बेशक जायज है, लेकिन मजबूरी में लो ना, राइट? बगैर मजबूरी के क्यों जाकर के तुम कर्जा ले रहे हो? ठीक है, तो कर्जा लेना कि मजाक नहीं है ना, ठीक? तो अब मरने के बाद भी उसकी अदायगी जो है ना वो वाजिब ही रहती है, खत्म नहीं हो जाती। बहरहाल, तो कर्ज अदा करना बहरहाल जरूरी है, बीवी का मेहर भी कर्जे में दाखिल है। अच्छा, किसी ने यहाँ पे लिखा कि अगर खुद अपनी मर्जी से माफ कर दे, अगर कर दे तब ना, लेकिन करती को थोड़ी है अपनी मर्जी से माफ, तो लोगों के प्रेशर की वजह से माफ कर रही होती है, ठीक है? और ये जो जहालत वाला तरीका है कि बीवी को सामने ला करके जो है वो माफ करवाते हैं, ठीक है, एक तो बेपर्दगी अपनी जगह पर, ठीक है, उसका गुना अलग, फिर भाई उसने, अगर तुमने अल्लाह की खातिर माफ करवाना ही है तो उससे जाकर के दरख्वास्त कर दो कि आप अगर अपनी खुशी से माफ कर दें, तो वो कर देगी अपनी खुशी से माफ अगर वो चाहेगी। ये पकड़ के लोगों के सामने लाना, तो ये तो इस बात की दलील है ना कि आप जो है वो प्रेशर, दोष, धमकी के जरिए से उसको माफ करवाना चाह रहे हैं। अगर किसी के वालिदैन जिंदा हो और उसके सब बेटे का डेथ हो जाए, तो उनकी खिदमत और खर्च कैसे हो? बहू खिदमत भी ना करे और उनका पैसा भी इतना ना हो कि उनका खर्च उठाए, यहाँ क्या करना चाहिए? अच्छा, माँ बाप जो है वो जिंदा है और बेटे जो है वो उनकी मौत हो गई है, बहू जिंदा है तो बहू खिदमत ना करे और उनका पैसा भी इतना ना हो कि उनका खर्च उठाए, यहाँ क्या करना चाहिए? देखें, औलाद के ऊपर जिम्मेदारी आती है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी पूरी ना करे तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, औलाद जिंदा है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो फिर क्या करना चाहिए? तो जिम्मेदारी सिर्फ औलाद पे नहीं आती, जिम्मेदारी जो है फिर औलाद के बाद जो अगले रिश्तेदार होते हैं उनके ऊपर भी तो आती है, ठीक है, जो उनके सगे रिश्तेदार हैं, अगर सगे रिश्तेदार मौजूद ना हो तो फिर जो उनके साथ रहने वाले हैं, जारुल जुनुब, राइट, जो पड़ोस में रहने वाले हैं, बहू जो है वो पड़ोस में रहने वाली मौजूद है ना, ठीक है ना, जिम्मेदारी की यानी वो क्या कहते हैं, डिग्री तो कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब कोई ना हो करने वाला तो फिर जो अगला आएगा तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी ना, ठीक है, या हुकूमत की जिम्मेदारी आखिर में बनेगी जाकर के। तो जब कोई जिम्मेदारी पूरा कर नहीं करने वाला होता है तो फिर अल्लाह होता है, और क्या कह सकते, ठीक है, तो करना क्या चाहिए? अब ये सवाल ऐसा करें ना जिसका सवाल का कोई तुक भी बनता हो कि मतलब क्या करना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगे और क्या करें भाई? तो शरीयत ने तो जिम्मेदारियां बनाई है ना, औलाद की जिम्मेदारी, फिर जो है वो औलाद की जिम्मेदारी, फिर जो है वो करीबी रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, फिर उसके बाद जो है वो पड़ोसियों की जिम्मेदारी बनेगी, ठीक है ना, ये सब तो खुदा खौफी के साथ होता है, ठीक है ना, अगर पड़ोसियों को खुदा का खौफ होगा तो फिर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, ठीक है, लेकिन अब और क्या करेंगे? आप जो है वो इश्तहार बनाएंगे, पैम्फलेट्स छापेंगे कि देखो फलाना जो है वो पड़ा हुआ है अपने बिस्तर पे और जो है वो फलाना उसकी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है, तो अब लोगों के दरमियान आप इसका चर्चा करेंगे या क्या करना चाहिए का, तो फिर इसी किस्म के जवाब मिलेंगे ना आपको, क्या करना चाहिए? इश्तहार बनाए, टीवी में इश्तेहार दें, अखबार में इश्तेहार दें, टीवी बिलबोर्ड के ऊपर अपना इश्तेहार लगाएं, क्या करना चाहिए? ठीक है, खुद जाकर ही करें भाई, खुद जाके करें उनकी खिदमत। ठीक है, करना ये चाहिए कि खुदा खौफी अपने अंदर भी पैदा करें, आखिरत की फिक्र अपने अंदर भी पैदा करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। करना ये चाहिए, ठीक है ना? अगर ये कर रही हैं तो अपना काम कर रही हैं, अगर ये नहीं कर रही तो फिर इश्तेहार बांट के लोगों को रुसवा करेंगे कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, बहरहाल आपका सवाल ही ऐसा है कि इसका जवाब भी ऐसा ही है। ठीक है, खाला के बेटे तो हैं लेकिन वो रख नहीं रहे और वो भाई के पास आना चाहती हैं, तो उनको अपने पास रख लें? वो मुझसे पूछ करके रखेंगे अपने पास भाई बेटे हैं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे, तो बेटों को उसका उसका हिसाब देना पड़ेगा, तो भाई करें, भाई रख लें, मुझसे इजाजत मांग रही हैं आप। मैं इजाजत तो, हाँ जी रख लें, मेरी इजाजत है, आप रख लें। होता है फ्री में, फ्री में जो है वो इजाजत लेना, जिसका कि कोई हैसियत ही कोई नहीं उस इजाजत की। और यानी रख लेना चाहिए, इस तरह से अगर पूछें तो फिर बात बनती है, लेकिन रख लेना चाहिए, हाँ भी मशवरा ये है कि हम रख लेना चाहिए। जी हाँ, रख लेना चाहिए, बिल्कुल रख लेना चाहिए। ठीक है, खाम खाम है ना, फ्री में इजाजतें इजाजतें मत मांगा करें। ठीक है, इजाजत उससे मांगता है बंदा जिसका कि कोई वहां पे अथॉरिटी बनती हो, उससे इजाजत मांगी जाती है। खाम खा की इजाजतें मत मांगा करें। बहरहाल तो यहाँ पे क्लास का टाइम खत्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।